नमस्कार, मैं रवीश कुमार। श्रीलंका में सरकार नहीं है, वहां केवल जनता बची है जो सड़कों पर है। जनता की आंधी चल रही है और उससे बच के नेताओं के भागने के लिए सड़क नहीं बची है। कुछ महीने पहले की बात है जब यही जनता अपने उन नेताओं की दीवानी हुआ करती थी जिनके खिलाफ आज वो सड़कों पर है। श्रीलंका में जो भी हुआ है पहले उसके कारणों को समझना जरूरी है। वहां हो रही घटनाओं को लेकर भारत के लिए समानता निकालने से बचना चाहिए। कारणों और लक्षणों में समानताएं हो सकती हैं, मगर जरूरी नहीं कि घटनाएं भी उसी तरह से दोहरा दी जाएं। इस तरह की जल्दबाजी से बचने में कोई हानि नहीं। श्रीलंका में जो हो रहा है उसे अपनी आंखों की पुतलियों में सनसनी पैदा करने के लिए मत देखिए। क्योंकि सड़क पर भूखी जनता का आक्रोश देखकर तुरंत ही कविता और शेरो शायरी पर पहुंच जाने की बहुत लोगों की आदत हो चुकी है। बात बात में किसी की नज़में ट्वीट कर शाम को पार्टियों में चले जाते हैं, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए देखिए कि जो जनता इस वक्त श्रीलंका की सड़कों पर है वह कुछ महीने पहले तक बौद्ध गौरव की राजनीति के नशे में इतनी नफरत से कैसे भर गई थी। अतीत का स्वर्ण युग लौटाने की फर्जी राजनीति में उसे मजा क्यों आ रहा था। हिंसा की इन तस्वीरों से हम सभी को यह समझना चाहिए कि क्या जनता को जनता बनने में उसके घर के जल जाने तक का इंतजार किया जाएगा। तब तो यह जनता अपने ही किए की सजा भुगतती लग रही है, अपने घर की आग से बचने के लिए सांसदों के घर जला रही है। एक सवाल और ध्यान में रखिएगा, क्या इस संकट में केवल धर्म आधारित अंधराष्ट्रवादी राजनीति की भूमिका है? उन आर्थिक नीतियों की क्या भूमिका है जिसे कट्टर और उदारवादी दोनों प्रकार के नेता अपनाते हैं? अगर आप आर्थिक नीतियों की नजर से भी दोनों पक्षों को देखेंगे तो मुमकिन है तस्वीर कुछ ज्यादा साफ नजर आएगी, श्रीलंका भी नजर आएगा और दूसरे देशों के छोटे छोटे संकट भी नजर आने लगेंगे। जनता को अंत में जनता का ही पजामा सूट करता है। उस जनता को पजामे और आपे से बाहर लाने के लिए गोटाब्या और राजापक्षे की पार्टी ने 70% की बौद्ध आबादी की राजनीति को हवा देनी शुरू कर दी। अतीत के गौरव की स्थापना के हुंकार भरे जनता उनके पीछे ललकार भरने लगी। मैं कभी श्रीलंका नहीं गया और इस संकट से पहले भी गहरी दिलचस्पी का वक्त नहीं मिला। इतना बता देने से एक दर्शक के तौर पर आपके लिए भी आसान हो जाता है कि जो टीवी के सामने है वो ना तो हीरो है ना सर्वज्ञाता है, लेकिन आपके लिए जो पढ़ा है उसी से बता रहा हूं। श्रीलंका की आबादी में 70% से अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, 12.6% हिंदू हैं, 9.7% मुस्लिम और 7.4% ईसाई है। 2020 के मार्च महीने में वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक फरमान जारी किया कि कोविड से मरने वाले मुसलमानों को भी शवों को जलाना पड़ेगा, दफनाने की इजाजत नहीं होगी। जाहिर है यह वैज्ञानिक फैसला तो था नहीं, बहुमत के दम पर छोटी आबादी को डराने और सताने की गुंडई थी। आज की आक्रोशित जनता को कभी यह सब ठीक लगा करता होगा, तभी तो सरकार इस तरह के बेतुके फैसले ले रही थी। इस जनता को दूसरे को सताने में सुख मिलने लगा होगा, तभी तो वह सरकार के इस फैसले को अनदेखा कर रही थी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने श्रीलंका की सरकार से अपील की थी कि वह मुसलमानों के लिए कोविड शवों को जलाने के फैसले को वापस ले ले, दफनाने की अनुमति दे दे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि इससे मुसलमानों के प्रति हिंसा भड़केगी, समाज में नफरत का विस्तार होगा। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नवंबर 2019 में गोटाब्या राजापक्षे राष्ट्रपति बनते हैं, तब श्रीलंका में सिंहली बौद्ध के बहुमत की राजनीति की आंधी चलने लगी थी। अगस्त 2020 में संसद के सत्र का उद्घाटन करते हुए गोटाब्या कहते हैं कि वे बौद्ध शासन व्यवस्था को बढ़ावा देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। इसके लिए बौद्ध धर्म गुरुओं की एक सलाहकार परिषद बनाई गई जिससे सरकार राय मशवरा करेगी कि शासन व्यवस्था कैसे चले। जब धर्म गुरुओं से ही सलाह लेकर सरकार चलानी थी तो फिर चुनाव ही क्यों करवाए जा रहे थे, लोग सांसद ही क्यों बन रहे थे। श्रीलंका के एक प्रभावशाली बौद्ध भंते मेदागामा धम्मानंदा ने प्रदर्शनकारियों का साथ देने का ऐलान किया है, सरकार से इस्तीफा मांगा है। इन्होंने 2019 में भी चेतावनी दी थी कि राष्ट्रपति और सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक मामलों में बौद्ध भंते को शामिल नहीं करना चाहिए। मेदागामा धम्मानंदा ने कहा है कि वे और कई दूसरे बौद्ध नेताओं ने राष्ट्रपति गोताबाया से मांग की है कि देश को संकट से बचाने के लिए अंतरिम सरकार की स्थापना करें और पद छोड़ दें। बौद्ध शासन की स्थापना की जड़ श्रीलंका में आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होने के समय से रही है, लेकिन राजापक्षे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसे फिर से हवा देनी शुरू की और इस बार जोर पकड़ने लगी। आशुतोष वार्षणीय ने श्रीलंका के ऊपर कुछ ट्वीट किए हैं, इसमें दी गई जानकारी से भी काफी कुछ समझा जा सकता है। 1956 में श्रीलंका में सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और तमिल को बाहर कर दिया गया। 1980 के दशक में वहां गृह युद्ध छिड़ गया, इतना लंबा विवाद चला। कई दशकों बाद श्रीलंका में शांति आई तो जनता को फिर से बहुसंख्यकवाद की राजनीति का चस्का लगा दिया गया। 70% की आबादी सिंगली गौरव की भाषा बोलने लगी, भाषा और धर्म के आधार पर 70% की राजनीति। आप पूरे दक्षिण एशिया में ऐसा देखेंगे, हर जगह भाषा और धार्मिक पहचानों को लेकर सुलगाया जा रहा है। कुल मिलाकर भाषा और धर्म की राजनीति के बहाने लोकतंत्र की संस्था और लोकतांत्रिक चेतना को ध्वस्त कर देने की कहानी है श्रीलंका की, जो दुनिया में पहले भी घट चुकी है और आगे भी घटती रहेगी। अमेरिकी विदेश विभाग एक रिपोर्ट तैयार करता है, इसे रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम कहते हैं। इसी रिपोर्ट में भारत को चिंताजनक वाले देश की कैटेगरी में रखा गया। 2020 की रिपोर्ट में इस बात का भारत सरकार ने प्रतिवाद भी किया था। श्रीलंका के ईसाई समूहों का एक व्यापक संगठन है जिसका नाम है नेशनल क्रिश्चियन इवेंजेलिकल अलायंस ऑफ श्रीलंका, NCEASL। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 18 जनवरी 2020 के दिन 150 लोग गांव के एक चर्च में घुस गए और पादरी से कहा धार्मिक गतिविधियों को बंद कीजिए, चर्च को बंद कीजिए। 23 फरवरी को एक और इलाके में चर्च में सर्विस चल रही थी, 100 लोग घुस आए और पादरी से सवाल करने लगे कि उनकी पूजा स्थल की कानूनी वैधता क्या है। इन 100 लोगों में एक बौद्ध धर्म का गुरु भी था जिन्हें भंते कहते हैं अंग्रेजी में मॉन्ग। इन लोगों ने ईसाइयों से कहा कि गांव छोड़कर चले जाइए, दोबारा लौटने की सोचिए भी नहीं। धार्मिक भेदभाव की राजनीति में जनता को आनंद तो मिल ही रहा होगा, लेकिन देश में क्या हो रहा है इससे जनता दूर होने लगी। दूसरे धर्म के छात्रों को मजबूर किया गया कि वे बहुमत के धर्म की पुस्तकें स्कूल में पढ़ें, जबकि वहां नियम है कि सभी को स्कूलों में अपने अपने धर्म की शिक्षा दी जाएगी। कानून में कुछ और लिखा है, जमीन पर कुछ और हो रहा है, धर्म का आतंक फैलाया गया। 27 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका में एक टास्क फोर्स का गठन होता है, इसे एक देश एक कानून भी कहा जाता है। 13 सदस्यों के इस टास्क फोर्स में केवल सिंगली बौद्ध समुदाय से ही सदस्य बनाए गए। राजापक्षे की यह सनक जनता को नजर नहीं आई कि इस तरह से भेदभाव क्यों किए जा रहे हैं। नवंबर 2021 की इस खबर में लिखा है कि श्रीलंका के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रपति गोटाबाया से मांग की है कि वे एक देश एक कानून को लेकर बनाए गए टास्क फोर्स को वापस लें। इसमें तमिल, हिंदू, कैथोलिक और ईसाई अल्पसंख्यकों में से भी सदस्य बनाए, जो कि नहीं बनाया गया है। कानून मंत्री अली साबरी ने तब बयान दिया था कि एक देश एक कानून के लिए टास्क फोर्स बनाते समय उनसे पूछा तक नहीं गया। इसी तरह 1 जून 2020 को पुरातात्विक और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए एक कमेटी बनती है, इसमें भी केवल सिंगली बौद्ध लोगों को सदस्य बनाया जाता है, जिसका काम था कि मुस्लिम और तमिल बहुल इलाकों में पुरातात्विक स्थलों का सर्वे करना। इसके जरिए उन धर्म स्थलों के बौद्ध स्थल होने का दावा किया जाने लगा। इन दो फैसलों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह गोटाबिया राजापक्षे की सरकार हर धर्म के अल्पसंख्यकों को सता रही थी, उन्हें मानसिक तनाव दे रही थी, सरकार की कमेटियों से बाहर कर रही थी, बहुसंख्यक जनता को भटकाने के लिए अल्पसंख्यकों पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। ये सब वहां की प्रेस में छपा है, वहीं से बता रहा हूं। न्यूज फर्स्ट एमटीवी चैनल पर 31 दिसंबर 2021 का एक लेख है। इस लेख में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के घर की सजावट के बहाने श्रीलंका के हाल पर व्यंग किया गया है। कहा गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के घर की सजावट पर खर्चे हो रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में तो पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन सरकारी घर दे ही दिया जाता है। हमारे राष्ट्रपति तो अपनी जेब से करोड़ों रुपए खर्च कर निजी जेट विमान से तिरुपति दर्शन करने जाते हैं और यह बात जनता को शान से बताते हैं। वह जनता सवाल भी नहीं करती कि महिंदा राजपक्षे एक किराए के मकान में रहते थे, आज इतने अमीर कैसे हो गए कि प्राइवेट जेट से भारत जाकर तिरुपति के दर्शन कर रहे हैं। लोगों को यह नहीं चाहिए कि वह भी जेट में यात्रा करें, बल्कि उन्हें चाहिए जरूरत की चीजें जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, बिजली, गैस सिलेंडर, सब्जियां, नारियल और मछली भी। इस लेख में यह भी लिखा है कि जब भी हमारे नेता बकवास करें तो चुप नहीं रहना चाहिए, हमारी नियति हमारे हाथ में है। भवानी फोनसेका मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और श्रीलंका में वकील हैं। शुभांगी डेढ़गवे और सुशील महापात्रा ने भवानी से वहां चल रहे हालात के बारे में बात की है और ये बातचीत अंग्रेजी में है।
We are seeing a united front in terms of many citizens coming together in the demand for change. So that is quite remarkable. But this is not to take away from the fact that there are many, many issues that require attention. And this particular crisis point has brought communities together. But there are also many, many divisions and tensions that will require attention into the future. The government seems to have denied that there was a crisis point. I mean, if you look at what's been happening in the last few weeks, in Sri Lanka, we've had scarcity of essential items, where people have had to stay in long queues to get essential food, fuel, gas, long queues to get petrol, diesel. So, you know, the warning signs were there that people were suffering. There were people also dying, staying in line in the last few weeks. But the denial or the lack of acknowledgement that the Sri Lanka was heading towards crisis point has led to this particular situation. So, yes, the government ignored to some extent the gravity of the situation. They could have done so much more.
श्रीलंका में दो महीने से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे। हिंसा इसलिए भड़की कि लोगों को लोगों से भिड़ाने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई। सरकार के समर्थन से लोगों को बसों में भरकर लाया गया। इन्होंने जब प्रदर्शनकारियों पर हमले किए तब उसके जवाब में हिंसा भड़क गई।
हमारे देश की मजदूर यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। हम भी गोटाबाया और महिंदा राजपक्षे द्वारा गोलफेस में प्रदर्शनकारियों पर बर्बर हमले की सख्त निंदा करते हैं। देश भर में आज इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। गोटाबाया के सत्ता छोड़ने की मांग को लेकर हमने 28 अप्रैल और फिर 6 मई को हड़ताल की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जनता का गला घोटा, लेकिन फिर पूरे देश ने उन्हें सबक भी सिखाया।
हमने कल देखा कैसे महिंदा राजपक्षे ने साजिश बनाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला कराया। वो दूसरे प्रांतों के नेताओं को प्रधानमंत्री के घर लेकर आए, प्रदर्शनकारियों पर हमले के लिए भाड़े के बदमाशों को लाए। हम मांग करते हैं कि देश में आग लगाने और प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई करने के लिए महिंदा राजपक्षे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
श्रीलंका के लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि गरीब लोगों से कहा जा रहा है कि सरकार की योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे सरकार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हमले करेंगे। पुनर्वास केंद्रों से कैदियों को बसों में भरकर लाया जा रहा है ताकि सरकार समर्थक रैली बड़ी लगे। सरकारी कर्मचारी और अफसरों पर दबाव डाला जा रहा है कि लोगों के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हों, लेकिन सरकारी अधिकारी लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। एक सांसद ने लोगों पर गोली चला दी तो भीड़ से बचने के लिए उसने खुद को ही गोली मार ली। लोगों ने खास तरीके से पूजा की है, उनसे कहा गया है कि भगवान से अपनी किस्मत मांग लें या शिकायतों का समाधान। सरकार समर्थक भीड़ ने लाइब्रेरी पर हमला किया तो कई लोगों ने किसी तरह से किताबों और लाइब्रेरी को बचाने की कोशिश भी की। जनता अब कह रही है कि किताब ही जनक्रांति का सबसे बड़ा हथियार है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के देश में इस बात को नहीं समझा जा सकेगा, लेकिन व्हाट्सएप के इस दौर में कहा जा रहा है कि किताब ही क्रांति का हथियार है। ये सुंदर बात है कि लोग किताबों की कीमत समझ रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो हमें श्रीलंका की पत्रकार मैरिसा डिसिल्वा के ट्विटर हैंडल से मिली है और उनकी इजाजत से मिली है।
मालवड़ा बाहरी कोलंबो, बासिल राजपक्षे का बंगला आग की भेंट चढ़ गया। कैंडी श्रीलंका, पूर्व मंत्री केहलिया रामबुकवेला के घर को भी आग लगा दी गई। हम्बनटोटा श्रीलंका, राजपक्षे परिवार का घर जला दिया गया। श्रीलंका में सरकार से नाराज प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस तरह दिख रहा है। जगह जगह ये आगजनी अब आम हो गई है। सोमवार तक 40 से ज्यादा मंत्रियों, सांसदों और सरकारी संस्थानों के सदस्यों के घरों को आग लगा चुके प्रदर्शनकारी अब भी थम नहीं रहे। प्रदर्शनकारियों के हमले के डर से पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपने परिवार के साथ एक हेलीकॉप्टर के जरिए कोलंबो पुलिस पार्क ग्राउंड से निकल गए। उन्होंने कोलंबो से करीब 270 किलोमीटर दूर त्रिंको माली के नौसेना बेस में शरण ली है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नौसेना के इस ठिकाने को भी घेर लिया। इसके कुछ ही देर बाद प्रदर्शनकारियों ने बाहरी कोलंबा के मालवड़ा में पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे के बंगले को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पहले कंपाउंड में पत्थरबाजी की और फिर गेट को तोड़कर इमारत में आग लगा दी। श्रीलंका में जारी इन प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पश्चिमी प्रांत की इंचार्ज सीनियर डीआईजी देशबंधु तेनाकून पर भी हमला किया। वो ये जानना चाहते थे कि प्रदर्शनकारियों पर हमले का आदेश किसने दिया। इस बीच श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दूसरों को या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इस आदेश के बाद स्थिति और खराब हो सकती है। कोलंबो से शीजा एमएस की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
श्रीलंका की हालत बहुत खराब है। वहां के पत्रकार लिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने संकट को अनदेखा किया है, जिसके बारे में समझा जाता था कि जब वो बोलेगा तभी दुनिया को बात पता चलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। श्रीलंका की जनता सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, लोगों तक बातें पहुंच रही है। जनता अपने आप में मीडिया बन गई है। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी बात रख रहे हैं। क्या ऐसा भारत में किसान आंदोलन के समय नहीं हुआ था? पत्रकार दानिश सिद्दीकी को एक बार फिर से पुलित्जर पुरस्कार मिला है। दानिश को पुलित्जर पुरस्कार भारत में कोविड की दूसरी लहर के कवरेज के लिए मिला है। रॉयटर न्यूज एजेंसी के चीफ फोटोग्राफर के तौर पर दानिश ने जब भारत के शमशानों से तस्वीरें ली तब जाकर लोगों को पता चला कि हालात क्या है। मरने वालों की गिनती केवल अंकों में नहीं हो सकती, उन तस्वीरों ने मौत से पर्दा हटा दिया, तमाम आंकड़ों को चुनौती दे डाली। उसके बाद दानिश अफगानिस्तान चले गए, जहां तालिबान और अफगान स्पेशल फोर्सेस के बीच की क्रॉस फायरिंग में फंस गए और गोली लगने से उनकी जान चली गई। दानिश को 2018 में फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। दुनिया की ऐसी कोई प्रतिष्ठित पत्रिका नहीं होगी जहां दानिश की तस्वीरें ना छपी, जिसने पाठकों को संवेदनशील ना बनाया हो। दिल्ली दंगों में दानिश की तस्वीरें आज भी बोलती हैं। दानिश के पिता अख्तर सिद्दीकी और मां शाहिदा सिद्दीकी को एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों की तरफ से बधाई। दानिश के साथ साथ अमित दबे, अदनान आबिदी, सन्ना इरशाद मट्टू को भी पुलित्जर पुरस्कार मिला है। सभी रॉयटर्स से जुड़े हैं और इन सभी को बधाई। मूल बात यही है कि सरकार के दावे अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन पत्रकार का काम अपनी जगह पर होता है। जब पत्रकार अपना काम नहीं करेगा तब क्या होगा? इसका कोई एक जवाब तो नहीं हो सकता।
असम वार्ता व्हाट्सएप बॉट और मासिक न्यूज़लेटर लॉन्च किया जा रहा है। ये एक ऐसा विशेष प्लेटफॉर्म है जो सीधे नागरिकों से जुड़ता है, साथ ही नागरिक भी असम सरकार के साथ जुड़ते हैं। असम या देश का कोई भी नागरिक असम वार्ता व्हाट्सएप बॉट के माध्यम से असम सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। असम वार्ता व्हाट्सएप बॉट से आप अपनी पसंदीदा भाषा में बात कर सकते हैं। साथ ही आप अपना ईमेल आईडी देकर न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। असम वार्ता सरकार और जनता के बीच संवाद का एक ऐसा माध्यम है जो टेक्नोलॉजी के युग में नागरिकों को सरकार की हर गतिविधि से अपडेट रखेगा।
लेकिन क्या ये एक जवाब है? गृह मंत्री अमित शाह ने यह अखबार लॉन्च किया है असम में। असम सरकार का यह अखबार है जो महीने में एक बार आएगा। जिस सरकार की हर बात उसी क्षण सारे चैनलों पर कवर होती है, उसे मासिक समाचार पत्र की जरूरत क्यों पड़ी? पुलित्जर कमेटी को रिसर्च करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब पत्रकार पत्रकारिता बंद कर देंगे तो सरकारी संस्थानों में पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए सरकार को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाएगा।
लोकतंत्र का निर्णायक मत देश के एक एक नागरिक का है, उसको जानने का अधिकार है। उन्होंने जो सत्ता दी थी वो सत्ता का उपयोग उनके हित में किस प्रकार से, और आज ये जो प्रयास हुआ है वो भी एक प्रकार से स्तुत्य प्रयास। अभी न्यूज़लेटर वो कोई एक बार का क्रम नहीं, न्यूज़लेटर निरंतर चलता रहेगा। हर महीने, हर सप्ताह, हर 15 दिन आप क्या कर रहे हो, ये जब कहना होता है तो करना भी पड़ता है, क्योंकि जनता देखती है, जनता जानती है। न्यूज़लेटर शुरू करना बड़ा सरल है, मगर सरकारों के न्यूज़लेटर को चलाना, क्योंकि बाद में छापोगे क्या अगर कुछ करोगे नहीं तो, ये साहस भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही करती।
इन दिनों इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, इसके बाद भी सारा कवरेज राजनीतिक गतिविधियों के आसपास सिमटा हुआ है। उसमें भी ढंग से 3-4 सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, केवल नेताजी के आने ले जाने का कवरेज हो रहा है। मगर इस महंगाई और गर्मी में आम लोग किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, इसकी खबर भी लीजिए। अपने समय के हालात से अनजान मत रहिए, अनजान बने रहने से पानी का संकट दूर नहीं होता है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 30,600 करोड़ रुपए से अधिक की नल जल योजनाएं स्वीकृत। 2 साल में 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर 40% घरों तक नल का पानी। 4,270 से अधिक गांवों में 100% नल जल। 48,75,000 घरों में नल कनेक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में 5,57,000 हैंडपंप और 16,915 नल जल कनेक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में 95.80% हैंडपंप चालू। ये मुनादी डिंडोरी जिले के अझावर माल गांव में हुई। सारे जल स्रोत सूख गए हैं, पानी को लेकर झगड़ा आम है। ऐसे में ये फैसला पंचायत ने लिया है।
हैंडपंप निकाले हुए, आप लोग 2 मटके ले जाओ, 2 मटके पानी भरकर अपने घर जाओ। इसके बाद में 2 मटके से अगर तीसरा चौथा मटका अगर मिला गया है एक आदमी के, तो उसके आगे कार्रवाई किया जाएगा।
बड़वानी के लाईझापा गांव में भीषण पेयजल संकट है। लोग सारे काम छोड़कर पानी की जुगत में लगे रहते हैं। गांव वाले कहते हैं पानी संकट के चलते 10 से ज्यादा बहुएं घर छोड़कर चली गई है। 150 से ज्यादा युवकों की शादी नहीं हो रही है।
100-150 का लगभग है।
अच्छा, जो कुंवारे हैं अभी?
हाँ।
और ऐसी लड़कियाँ कितनी अपनी जो शादी के बाद में घर चली गई वापस?
यहाँ पे का है अभी 10-11 लड़की जाती रही है,
वापस चली गई।
हाँ, वापस चली गई।
2 किलोमीटर और से जानो पड़े।
कितना घर है यहाँ पे?
यहाँ का लोके टापरी छे जीवनपुर में। 10-11 घरों से ला टापरी छे। जेठ माँ का खून नालियां नालियां रोवे तो पीजे उकरी करी और तेन जात रोवे काई पी ले।
इसी जिले के गोलगांव, खैरवानी और सेमलेट में महिलाएं झिरी और गड्ढों से पानी भर रहे हैं। खच्चरों से पानी ढोया जा रहा है। मासूम बच्चे भी सर पर पानी के बर्तन रखकर ले जाने को मजबूर हैं। पशुओं के साथ सामाजिक न्याय की ये तस्वीर पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल के विधानसभा की है।
शादी तो ऐसी चीज है, पानी मिले नहीं मिले, पर शादी कहाँ मिले? अरे जोड़े बिना रह थोड़ी सकते, तो वो भी आप लोग व्यवस्था करेंगे, चिंता वाली बात नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि देश का प्रधानमंत्री कितने घंटे काम करता है आप सब जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात दिन, वो हमको भी कहता है आप सब चिंता करो, आप मुझे बताओ कि विकास के बारे में क्या करना चाहिए। वाकई में अभी नर्मदा जी का पानी आप लोगों ने देखा होगा, होती से हम लोग ये बड़वानी का ये अंदराड़ा है, ओसाड़ा है नहीं, ओसाड़ा में जा रहा है नर्मदा जी का पानी।
रायसेन जिले के फतेहपुर में गंदे पानी का ये कुआं ही प्यास बुझाने के काम आता है। ये इलाका चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का है।
पानी की सबसे ज्यादा
घटिया से पानी ले ले
और दो रहे
पानी जा रहे भर रहे।
विदिशा जिलों में जगह जगह पानी के टैंकर पर झूमते झपटते लोग दिख जा रहे हैं।
पानी की बहुत दिक्कत है कि भाई साहब हम साइकिलों से लाते बच्चे ढोडो का और टैंकर के भरोसे बैठे थे, सब दिन हो जाए टैंकर ही ना आए, सब दिन बच्चे फिर रहे हैं धूप में। अब अभी तक टैंकर का कोई पता ही नहीं है।
नगर पालिका में नल भी लगे हैं तो भी कभी समस्या हल नहीं होती है, पानी नहीं आता है नालों में।
आपको लग रहा है हम दूर दराज भटक रहे हैं, ये भोपाल शहर में आशिमा मॉल के पीछे की बस्ती है। वार्ड 53 के प्रभारी को पता नहीं, हमने फोन लगाया तब भी जवाब नहीं मिला। वैसे यहाँ टैंकर ही आसरा है, लोग काम धाम छोड़कर गर्मियों में टैंकर की राह देखते हैं।
पानी की प्रॉब्लम है सर,
पानी की प्रॉब्लम आ रही है। तो मजदूरी पे जाते हैं और इस वक्त कभी पानी का इंतजार करना पड़ता है, काम में दिक्कत नहीं आती?
जैसे बाइक को छोड़ना पड़ता है, कभी हम भी रुकते हैं पानी के चक्कर में, क्योंकि पानी का कोई टाइम नहीं है,
कोई नहीं जा पाता, ना मेरे भाई ना बाप ना मताई कोई नहीं, सब पानी के अपने अपने चक्कर में रहते हैं,
कोई टाइम नहीं है पानी का।
काम वगैरह पे जाने में
काम, अब जो ठेला भरा खड़ा है सब्जी का, अब पानी के इंतजार में खड़े हैं।
आपको लगता होगा मुख्यमंत्री जी कुछ करते नहीं, वो नवंबर में अपने गृह गांव में अधिकारियों को धमका कर गए थे। सुनिए,
ये कौन का काम? मेरा काम है, एक साथ आवेदन दे रहा हूँ, 15 दिन के बाद मैं पूछूंगा, अगर एक जगह भी शिकायत आ गई तो तुम नहीं रहोगे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, एक एक कॉपी में देखूंगा।
वैसे अप्रैल में फिर पहुंचे तो हालात जस के तस थे। सो सुबह 6:30 बजे सारे सरकारी अधिकारियों को बुलाया, बैठक की, लेकिन हालात ये तस्वीरें बता रही हैं। 2024 तक भी हालात शायद ही बदलें, क्योंकि पीएचई ने 6500 करोड़ रुपए की लागत से 18,000 में से 14,000 गांवों में ही काम शुरू किया है। पीएचई और जल निगम ने जिन गांवों में काम शुरू किया है उनमें 40% में ही काम पूरा हो पाया है। राज्य में 10,000 टंकियां बननी है जिसके लिए 14,000 कुशल श्रमिक चाहिए। एचडी आयरन पाइप, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से निर्माण लागत भी बढ़ गई है। वैसे इतनी तकलीफ दे तस्वीरों के बाद एक खुशखबरी, जल संकट से निपटने पीएचई विभाग ने 400 इंजीनियरों की भर्ती की योजना बनाई है। 2 महीनों में दावा है कि पद भर दिए जाएंगे, शायद तब तक बारिश से जल स्रोत भी भर ही जाएं।
पानी को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संजीदा हैं। आजकल वो संस्कृत, रहीम और तुलसीदास सबको उद्धृत करते हुए कहते हैं, हमारी संस्कृति में कहा गया है, अमृतम बे आपा अमृत क्या है, जल ही अमृत है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। फिर वो तुलसीदास जी को उद्धृत करते हुए कहते हैं, सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पहीं आवा। तालाब के महत्व को गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय रेखांकित किया, इसलिए पानी तो होना ही चाहिए। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बिना पानी के काम चल नहीं सकता। और ये बातें मैं नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। बावजूद उसके राजधानी भोपाल में क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। अपने सहयोगी मुनाफ और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
महान संतूर वादक, पद्म विभूषण, पद्मश्री पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। 84 वर्ष के शिव कुमार शर्मा कई दिनों से बीमार थे। उस्ताद अमजद अली खान ने कहा है कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिए हैं, लेकिन संतूर पर संगीत की उनकी दुनिया फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर आप जीवन से निराश हैं, किसी तरह से गर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्रेक में जाने से पहले इस वीडियो को आराम से देखिएगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। जिस तरह से आशीष मूछों पर ताव दे रहे हैं, उसे देखकर अगर आपको आनंद नहीं आता है तो फिर आप भारतीय समाज में मूछों के महत्व के बारे में कुछ नहीं जानते। बाकी आप जो जानते हैं उससे कहां किसी को एतराज है। सर्वज्ञाता दर्शक समाज तक यह वीडियो पहुंचे और हमें ब्रेक लेने की अनुमति मिले, वीडियो देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह से जुड़े कानून के सिलसिले में सरकार से पूछा है कि जब तक सरकार ब्रिटिश दौर से चले आ रहे इस कानून की समीक्षा कर रही है तब तक क्या इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार को बुधवार को इस सवाल का जवाब देना है। इससे पहले सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने इस कानून की समीक्षा का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह से जुड़ी आईपीसी की धारा 124A की वैधता को चुनौती देने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के कानून के तहत केस दायर किए गए हैं या भविष्य में किए जा सकते हैं, क्या उनके हितों को देखते हुए समीक्षा पूरी होने तक इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है, और इस पर फैसला सरकार को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में देना है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक टिप्पणी पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत चंदन के साथ छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को धक्का मुक्की की और उनके खिलाफ नारे लगाए। प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर एक चर्चा में पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स से एक कहानी को उद्धृत करते हुए बताया था कि क्यों मुगल शासक औरंगजेब ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को ढहाया था। हालांकि प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि वो इस कहानी की पुष्टि नहीं कर सकते। इस कहानी में एक तथ्य को झूठा और आपत्तिजनक बताते हुए एबीवीपी के छात्रों ने आज विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के दखल से प्रदर्शनकारियों को प्रोफेसर रविकांत से अलग किया गया। उधर प्रोफेसर रविकांत ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि उनकी आवाज इसलिए दबाई जा रही है क्योंकि वो एक दलित हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था और वो सिर्फ किताब के एक अंश को ही पढ़ रहे थे, उसकी पुष्टि वो नहीं करते। दिल्ली में अवैध निर्माण गिराने के नाम पर बुलडोजर के इस्तेमाल का सिलसिला जारी है। मंगलवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसके तहत फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वालों के सामान पर बुलडोजर चलता रहा और गरीब लोग देखते रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच मंगोलपुरी इलाके के वाई ब्लॉक में करीब 200 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई चलती रही। इस बीच इलाके के विधायक मुकेश अहलावत बुलडोजर के आगे लेट गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया और ये कार्रवाई चलती रही। इस दौरान कई रेहड़ी पटरी वालों ने कहा कि उनकी यहां बहुत पुरानी दुकानें थीं जिन्हें बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया है। उधर एमसीडी के बुलडोजर जब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचे तो रेहड़ी पटरी वाले पहले ही अपना सामान हटा चुके थे। रविवार को दिल्ली के शाहीन बाग में ऐसी ही कार्रवाई शुरू हुई थी, हालांकि भारी विरोध के चलते कुछ देर बाद वो रोक दी गई। इस मामले में आपके स्थानीय विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने का केस दायर कर दिया गया है। और गरीब रेहड़ी पटरी वालों का सामान तो बुलडोजरों ने हटा दिया, लेकिन सब सवाल यही कर रहे हैं कि जो अवैध अतिक्रमण पैसे वालों ने तमाम कॉलोनियों में दिल्ली के किया है, उनका अवैध अतिक्रमण हटाने की सुध एमसीडी को कब आएगी, या फिर ये मार सिर्फ गरीबों पर पड़ेगी। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने दिल्ली में मुगल शासकों के नाम पर रखी गई सड़कों के नाम बदलने की मांग की है। इस सिलसिले में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक खत लिखा है। खत में कहा गया है कि सड़कों के नाम मुगल शासकों के नाम पर रखना गुलामी का प्रतीक है और इन्हें बदला जाना चाहिए। आदेश गुप्ता ने मांग की है कि तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह रोड, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं लोन रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड रखा जाना चाहिए। अब देखना है कि नाम बदलवाने की स्थानीय बीजेपी की ये नई मुहिम कितना सिरे चढ़ पाती है।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।